मवरी का लहू तो होठों लग चुका था। दूसरों की रटी हुई कविताओं की तुलना में मेरी अपनी कविताएं खराब लगती थी, मगर बदमाशी में मेरी होड़ करने वाला कोई नहीं था। नामवरी का उछा इस राह धीरे धीरे तुष्ट होने लगा। नादान देवी समझाने की चेष्टा करती पर निरर्थक। आखिर समझ तो अपनी ही काम देती है। इरपिंदर, शाहजी की सीख फलसे तक। वह कई बार नाराज होती, रूठती, पर बदमाशी की लत मुझसे नहीं छूटी। कविता की सफलता अभी काफी दूर थी। उसमें नामवरी हासिल करने के लिए बरसों तक धैर्य रखने की दरकार थी। बदमाशी के सतोष का चमत्कार तो हाथों हाथ मिलता था। हमारे परिवार में कुबेर जी वाभा के पास कविता लिखने का अच्छा खासा हुनर था। पढ़ाई और खेलकूद के प्रति उत्साह भी कम नहीं था। बिलाड़ा से सातवीं कक्षा पास करके वे आगे पढ़ने के लिए जोबनेर भर्ती हुए। मुझसे मनपसंद कविताएं नहीं लिखी गई तो मैं उनकी कविताएं याद करके सुनाने लगा। सुनने वालों की आंखें ऊंची ललाट में चढ़ जाती। पर मन से छिपी तो कोई चोरी नहीं होती। इरपिंदर, मैं स्वयं तो अपना बूता जानता ही था। वैसी कविताएं लिखना मेरे वश की बात नहीं थी। एक दफा तो शनिवार की सभा में ऐसा ठाट जमा कि क्या बताऊं। पूरी कविता तो फिलहाल याद नहीं है, पर उसकी अंतिम कड़ी भूलना चाहूं तो भी भूल नहीं सकता। अड़ी अंग्रेजी छोड़, धारो अंग्रेजी को। काफी लंबी कविता थी, सात आठ एक मनहर छंदों की। अंग्रेजी फैशन और अंग्रेजी भाषा की बुराई से सराबोर। मेरा मनचीता प्रतिशोध। ऐसी मालजादी अंग्रेजी छोड़कर सारे देशवासियों अंग्रेजी धारण करो। रेजी कहते हैं हाथों से कती बुनी खादी को। महात्मा गांधी की दुलारी खादी। फिर क्या कसर बाकी रहती। तालियों पर तालियों की गड़गड़ाहट। तीसरी बार सुनने के बाद भी श्रोताओं का मन